क्योंकि जो पेपर आउट करने का पूरा इंडस्ट्री है सर, वो 500,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री, वहाँ प्रॉपर तरीके से पैसे का बंदरबांट होता है। मात्र 1,14,00,000 के लिए उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, जिसका टर्नओवर एक समय में 200 CR पार कर रहा था पर एनम।
तो ऐसे 2-3 लक्षण जी की यार ये बर्बाद होने वाला है, क्यों हम करें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी?
मिडिल क्लास था, बस एक ही जरिया है सरकारी नौकरी, जो आपको सीधा नीचे से एलीट क्लास में पहुंचा देता है।
कि आप कंट्रोवर्सी बहुत अट्रैक्ट करते हो?
मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती, वो हो जाता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान।
क्या बात। नहीं तो मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच।
मुझे याद है कि जब मैं तैयारियां करता था, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो बीच बीच में सबको आ जाता है कि यार इसकी रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी सेम एसएससी जैसी, ये भी फॉर्म भर देते हैं। तो एक दो बार मैंने फॉर्म भरा था, वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो ऐसा हो गया था कि इंग्लिश पढ़नी है तो नीतू मैम की बुक तो चाहिए ही चाहिए, या नीतू मैम से पढ़ना है। और आज हम अभी बात ही कर रहे थे कि किस्मत की करवट, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के।
थैंक यू सो मच।
सरकारी नौकरी की मैंने प्रिपरेशन करी है, और मैं जैसे कानपुर में रहता हूँ तो वहाँ पे IIT की प्रिपरेशन करने के लिए भीड़ जमा रहती है। और बच्चे बहुत कम उम्र में आ जाते हैं और किराए के कमरे पे रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये सब मैं बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ। एक डर बैठ जाता है मैम कि ये इतनी भीड़, गला काट प्रतियोगिता। मेरे दोस्त हैं जो जब हम कॉलेज में थे तब उन्होंने शुरुआत करी थी और आज भी तैयारी कर रहे हैं। कब हमें छोड़ देना चाहिए?
कब छोड़ना चाहिए ये अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत रियलिटी बताना चाहती हूँ। जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसका 50% ही बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, पहली बात। उन 50% बच्चों में भी आपको मैं बता दूं, एक 10% बच्चा होता है जो एक्चुअली जो सही प्रिपरेशन करना हो, स्मार्ट वर्क, वो किए होते हैं। बाकी सब कुछ यूट्यूब से देख लिए, कुछ इधर उधर से देख लिए, बस ऐसे ही प्रिपेयर करके चले जाते हैं। तो कंपटीशन आपका वो पूरा 100% नहीं है, 50% का भी 10% है। दूसरी बात है, आपको प्रिपरेशन जब शुरुआत करते हो तो 6-7 महीने तो लग जाते हैं ये जानने में कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो बच्चा अगर आते साथ एक्सपेक्ट करेगा कि हम 1-2 महीने में उस लेवल के हो जाए जो बाकी सब है, तो नहीं हो पाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे जब एक वर्ड बोलती हूँ तो उसका सिनोनिम एंटोनिम जवाब दे रहे होते हैं स्क्रीन पे, और दूसरा लड़का बोल रहा होता है कि मैम इसको याद करना पड़ेगा, ये जो मीनिंग आप लिखवा रहे हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो इस लेवल में वेरिएशन होते हैं बच्चों के। आप जब उस क्रीम लेयर में पहुँच जाते हो तो मैं मानती हूँ कि तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ट्राई करनी चाहिए। हाँ, बाकी 1% तो किस्मत का भी हाथ होता है, जो आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, है ना।
तो मैं अब थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहूँगा मैम आपसे कि चलिए हमने मेहनत करी, हम उस 50% में 10% में आ गए, ठीक है, लेकिन कुछ है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे वो बताइए कि यार अब बस करो, अब आप कुछ और भी कर लो लाइफ में, आपने अपना पूरा 100% दिया, आपने 2-3-4 साल लिए, अपनी जवानी खराब मत करो। आप ऐसा देखते हो ऐसा अपने आसपास ऐसे बच्चों को?
रीजन क्या है कि जब बच्चे तैयारी करने आते हैं तो कुछ आते हैं 18 साल में, कुछ लड़के आते हैं 23-24 साल में। फिर मैं पूछती हूँ भाई 23-24 साल तक तुमने क्या किया, तो उसका कहना होता है मैंने खुद प्रिपरेशन किया। ये खासकर बिहार के जो बच्चे होते हैं ये थोड़ा सा है ना टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे हरियाणा के बच्चे देखती हूँ मैं, 18 साल में 12th का एग्ज़ाम दिए वो पहुँच गए। बिहार के बच्चों को शायद वो मिल नहीं पाता है उतनी सुविधाएं, जिसके कारण वो जब थक जाते हैं प्रिपरेशन करके तब वो आते हैं। मैं मानती हूँ 18 से 23-24 साल तक आप तैयारी करिए, जम के करिए और हो जाएगा, क्योंकि जो 18-19 ईयर्स में आ जाते हैं वो 21 ईयर्स में निकाल ही ले जाते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट उनका मेहनत रहा तो। अगर मान लीजिए वो 20-23-24 में नहीं कुछ कर पा रहे हैं 23-24 तक, तो मैं उनको एक ज़रूर और एक चीज़ कहती हूँ कि साइड में कुछ कर लो, चाहे वो BEd हो, ऐसा कुछ कर लो जिससे आगे चल के तुम कुछ और भी एग्ज़ाम्स दे सको। प्लस आजकल आप जानते ही हैं बहुत लोगों का रहता है स्टार्टअप का, तो मैं स्टार्टअप में ये बिलीव करती हूँ कि स्टार्टअप आप तभी करो जब उसमें हार्ट एंड सोल दे सको और बर्बाद होने की क्षमता आप में हो। क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, मैं चाहे जितना भी परेशान हो गई, गहने बेचने पड़ गए, कुछ चीज़ें बेचनी पड़ गई, लेकिन मुझे पता था मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब कुछ लोग होते हैं घर के पैसे बर्बाद कर दिए, पापा का प्रोविडेंट फंड बर्बाद कर दिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आ जाते हैं कि मैम नहीं चला सो क्लास मिलेगा।
मैम आप जैसे बच्चों के आसपास रहते, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ठीक है, आप बच्चों के आसपास रहते हो, कुछ लक्षण आपको दिखते होंगे, तो ऐसे 2-3 लक्षण जी की यार ये बर्बाद होने वाला है।
बच्चे बहुत यंग आते हैं, तो मैं नहीं मानती हूँ कि इसका कोई एक लक्षण 19-20 साल की उम्र में ऐसा होगा जो आगे जाके बर्बादी का कारण बनेगा। तो इसीलिए मैं उनके साथ बिल्कुल बहुत एंजॉय करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि यंग है, बबली है, उन्हें भी एंजॉय करने का पूरा हक है। क्योंकि 2 साल के बाद तो घर में भी बात सुनेंगे। मैं तो आज ही बोल के आई हूँ कि बेटा घर में कुत्ते भी जो रहेंगे ना, उनको भी सम्मान की रोटी मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, 2 बात सुना के मिलेगी, घर में रोटी अगर तुम बेरोजगार रह गए तो। तो कभी कभी ऐसी बातें उनको बोल के ना उनको कड़वा बोलना पड़ता है, ताकि वो समझे कि भाई सब मस्ती ठीक है लेकिन पढ़ना है। तो 19-20-21 साल में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जिसको मैं मानूंगी कि हाँ उसको बर्बादी की राह पे ले जाएगा। हाँ कभी कभी कुछ हार्मोनल उफान मारता है बच्चों को, तो मैं समझाती हूँ बेटा कंट्रोल करो बस, अदरवाइज इस उम्र में चाहे वो लड़की हो चाहे बाहर की चीज़ें हो, वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन लड़का है, जवान है, तो थोड़ा सा आप लिबर्टी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि लड़का है कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन दे शुड कंट्रोल देमसेल्व्स। क्योंकि बहुत ज़रूरी है लड़कों को ये समझना कि उनके कंधों पर पूरे घर का बोझ आने वाला है, तो जिम्मेदारपूर्ण हरकत तो उनको करनी चाहिए, थोड़ी लिबर्टी दी जा सकती है।
आपका कोई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया हो?
देखिए लाइफ में हमारे 1-2 स्टूडेंट से कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने एक है हमारा स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैम SSC तो मैं आपके पास पढ़ कर समझ गया था कि इसमें तो आप वो मार्केट खाली नहीं करने वाले हो, तो मैंने सोचा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में चलते हैं। आज वो टीचिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप जिस भी लाइन में जाओ पहले तो उसमें परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्ट हो जाओ, और आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके बराबर कोई खड़े होने की क्षमता ना रखे, इतना ज़्यादा अपने आप को उस फील्ड में माहिर बना दो कि यू शुड बी द नंबर 1 इन दैट फील्ड, तभी आप टिक सकते हो। क्योंकि आज नहीं, बहुत पहले की थ्योरी है सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट हो तो सर्वाइव करोगे, वरना हर साल मुखर्जी नगर में कम से कम कुछ नहीं तो मैं 10 कोचिंग देखती हूँ जो बंद होते हैं और 10 खुलते हैं, पिछले 19 साल से देखते आ रही
हूँ मुखर्जी नगर। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे मैंने स्टूडेंट लाइफ दी, मैं DU से पढ़ा हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, उसके बाद कोचिंग करी करोल बाग में और अपने IIT का कानपुर में तो देखा ही। अगर स्टूडेंट ढंग से पढ़ रहा है, डिसिप्लिन बना रहा है, तो वो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही जाएगा, भले एग्जाम क्लियर करे या ना करे। सो ये जितनी भी प्रिपरेशन है, ये कॉम्पिटिशन है, ये जो टीचर से मिलना है, कोचिंग जाना, बस्ता उठाना, ये आपको कुछ सिखा देता है जिससे कि आप लाइफ में किसी भी एरिया में जाओ अच्छा करोगे। और ये चीज़ मैं IIT वालों में बहुत देखता हूँ कि वो IIT भी कर ले रहे हैं, उसके बाद कितने सारे वो IIM भी क्रिया कर देते हैं, फिर वो IAS भी बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, लाइफ की भी होती है, आप मानते हो उस बारे में?
मैं इस बात पर बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं जब दिल्ली आई हूँ तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन में आपको मैथ्स और इंग्लिश ही मिलता है पढ़ाने को, और कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत साइंस मिलता है। जो ट्यूशन पढ़ा के मैंने इंग्लिश सीखा है, आज उसने मुझे इतना काबिल बना दिया कि मैं क्लास में खड़े होकर बोल सकती हूँ कहीं से क्वेश्चन पूछना है पूछो, क्योंकि उसने मुझे इतना काबिल बनाया। जब भी लाइफ आपको अच्छे से रगड़ के आपको पीस दे रही है ना, इसका मतलब है उसे किसी ना किसी तरीके से आपको तैयार कर रही है कि आगे कुछ धमाल होने वाला है। इसीलिए जब खराब समय आए तो बस उस समय सब्र रख लो, उसके बाद द स्काई इज द लिमिट।
जैसे हम SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन आप कराते हो, कितने सारे एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, एग्जाम के पेपर आउट हो जाते हैं। वो मैं कोई केस सुन रहा था कि बिहार से लड़का गया था वो एग्ज़ाम देने, और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा एक रात ख़राब करी, पैसे खर्च किए, होटल बुक किया, पता चला आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आज से नहीं हो रहा मैम, बहुत सालों से होता चला आ रहा है, ये कैसे फेथ रखें, क्यों हम करें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी?
मैं बताती हूँ, मेरे गिरिडीह में हमारा होटल है, वहाँ पे झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम था। तो जो बच्चे आए थे वो बेसिकली, उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और दूसरी बात है हमारे होटल में रूम भी नहीं था, मतलब वो बाहर बरामदे में रात भर सोए हैं, जो भी गमछा या चादर लेके आए थे उसमें सो के सुबह गए एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम का पेपर आउट हो चुका था। बच्चे बहुत निराश होते हैं और सच कहे इन लोग को देख के कई बार मुझे खुद रोना आता है कि आप सचिन को जब बैटिंग करने का मौका ही नहीं देते तो वो कैसे दिखाएगा कि मैं टॉप मोस्ट एक क्रिकेटर बन सकता हूँ। तो इनको मौका भी तो मिलना चाहिए। अच्छा, जब पेपर है आउट हुआ, ये जो पेपर आउट करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, उनको जमानत हो जाता है, फिर वो पेपर आउट करते हैं। उनकी हिम्मत इतनी इसलिए बढ़ी रहती है क्योंकि जो पेपर आउट करने का पूरा इंडस्ट्री है सर, वो 500,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है, वहाँ प्रॉपर तरीके से पैसे का बंदरबांट होता है और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो इतने पैसे निकाल नहीं सकते और वो इसी खेल में जो प्रॉब्लम होता उन गरीब बच्चों का होता है। तो मैं मानती हूँ कि इस मामले में तो इतना सख्त कानून आना चाहिए, खैर सरकार अभी कुछ कानून लेके आई इस मामले में, इतना सख्त होना चाहिए कि जो सच कहते हैं ना बुलडोज़र, ऐसे लोगों के घर पे और लाइफ पर चलनी चाहिए जो इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं।
एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, जिनके घर में पैसे हैं, जो कि जिनका पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं भेजेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और भेजेंगे भी तो कहेंगे आईएएस की तैयारी करना और किसी की तैयारी नहीं करना, बैंक में पीओ नहीं बनना। और एक इंडिया वो है जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा इंडिया है, जहाँ पर बच्चा बचपन से ही होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरे घर में स्टेबिलिटी आ जाए। तो मुझे सरकारी नौकरी चाहना है, मुझे इंडिया में ज़्यादा दिखता है ये मैम, ये सोच ठीक है इंडिया की या इसे बदलना ज़रूरी है?
देखिए, आपका अगर कंट्री डेवलप्ड है तो इसका मतलब है ज़्यादा लोग की आमदनी अच्छी है। जब कंट्री डेवलप्ड होता है तो लोगों के पास पैसा आता है, जब पैसा आएगा तो आपको सरकारी नौकरी के 50-60 हज़ार सैलरी कुछ नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो तो खैर पैसे वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, अगर वो चाहेंगे भी तो पावर चाहेंगे जो आपको सिविल सर्विसेज में। लेकिन आप अगर इंडिया के जनरल पॉपुलेशन देखिए तो कितने, मतलब कह सकती हूँ 80 करोड़ से ऊपर लोग तो 5 किलो अनाज ले रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीबी में बहुत लोग हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास है या तो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास तक बस एक ही जरिया है, सरकारी नौकरी, जो आपको सीधा नीचे से एलीट क्लास में पहुंचा देता है। और लोग सम्मान देते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी का होने का मतलब है कि आपकी स्टेबिलिटी है, जॉब नहीं जाएगी। आपने कोविड में देख लिया प्राइवेट नौकरी वालों का हाल, और सरकारी नौकरी वालों का 1 तारीख को ही सैलरी क्रेडिट हो जाता था। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी हो, और एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्टेबिलिटी इतनी ज़रूरी है कि भाई की सरकारी नौकरी लगती है ना तो बहन की शादी हो जाती है। तो इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे अगर भाग रहे हैं तो सही भाग रहे हैं। अगर इंडिया का इकोनॉमी रॉबस्ट होगा, सरकारी नौकरी का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा।
और जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियां बचेंगी?
देखिए, प्राइवेटाइजेशन सरकार इसलिए करती है क्योंकि सरकार को लगता है कि शायद हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा फायदा है नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आपके बहुत सारे ऐसे हमारे, चाहे रेलवे हो, चाहे आप कोई भी मिनिस्ट्री ले लीजिए, वहाँ पे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लोग चाहिए, क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर कोई एक रेल एक्सीडेंट होता है तो आप प्राइवेट जॉब वाले को क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी अगर होगी ना किसी की, तो वो अपने पर जिम्मेदारी लेगा कि भाई अगर यहाँ कुछ हुआ तो जिम्मेदार मैं ठहरा जाऊँगा, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। प्लस अगर आप देखिए, पुलिस ले लीजिए, आप टैक्स डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप प्राइवेट लोगों को नहीं इम्प्लॉय कर सकते हो क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। प्राइवेट जॉब्स वाले जो होते हैं वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आप अकाउंटेबल नहीं होते। तो मैं मानती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जिस हिसाब से किया जा रहा है, इतना इस लेवल के प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा दायरा है जो सरकारी नौकरी के अंदर में आएगा ही आएगा।
अच्छा मैम, जैसे सरकारी नौकरी के लिए मैं तैयारी करता हूँ, आप तो देखते ही हो रोज़ सुबह शाम, यही माइंडसेट होता है कि मेरी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा और मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये माइंडसेट ठीक है?
नहीं, ये माइंडसेट अब लोगों में नहीं है। अब सरकार बिल्कुल दबाव डाल के आपसे VRS ले लेती है।
ओके।
अभी कल ही मैंने देखा है कि 9:15 बजे अटेंडेंस होना चाहिए, नहीं तो 9:30 बजे तक आपको हाफ डे मार्क्ड हो जाएगा। अभी सरकार इस मामले में, सारे डिपार्टमेंट बहुत सख्त है। हमारे स्टूडेंट्स जो गए हैं बैंक पीओ में, उनको मिल जाता है टारगेट। जैसे कि मैंने कहा, यार तुम्हारा काम तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो। मैम का, उसने कहा, मैम एग्जैक्टली हमें ये टारगेट दिया जाता है कि इतने का हमें लोन देना है, इतना हमें अकाउंट्स खुलवाना है और इतना हमें पॉलिसी बेचना है। दूसरी बात है, आप सारे डिपार्टमेंट्स में देखेंगे कि अकाउंटेबल हो गए हैं सब कोई। टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया रहता है कि तुम्हें इतने टैक्स वसूल के लाने। तो सरकार अपनी तरफ से जो प्रेशर बनाती है सरकारी नौकरी वालों से काम लेने के लिए, मुझे लगता है वो भी सही है। और अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप ऑफिस जाएं, पान खाएं, चाय पिए, लंच किए और आ गए। अब वो ज़माना,
जब मैम ये नीट का एग्ज़ाम का सब कुछ हुआ था अभी रिसेंट में, पेपर लीक हो गए थे, आई गेस 60+ लोगों के AIR 1 आ गया था, आपके किसी बच्चे का फ़ोन आया, कोई रोता हुआ, कुछ किसी ने कुछ बोला आपसे?
मैं 2 दिन बहुत डिस्टर्ब रही थी। मैंने एक रील देख लिया था जिसमें वो लड़की कोने में बैठी हुई है और उसकी फ्रेंड उधर से शायद आ रही है, कोई आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, और उसने तुरंत ही स्लिप करके नीचे गिर गई, मतलब उसने सुसाइड कर लिया। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही मासूम होते हैं। कारण क्या है, ये रहते हैं माँ और बाप के बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। 1 fine morning इनको पता चलता है कि हमें जाना है तैयारी करने, कोचिंग जाना है, हॉस्टल में रहना है, उनको बहुत अच्छा लगता है सब कुछ नया नया। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि सब जिम्मेदारी उन पर है। जो उनके फ्रेंड्स हैं वो पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो पहले से तैयारी कर रहे हो या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो एक प्योर प्रेशर जो होता है वो उन पर बहुत रहता है। मेरे पास 2 स्टूडेंट का कॉल आया जिनका कहना था कि मैम अगर चीटिंग नहीं होता तो मेरा हो जाता, मेरे इतने मार्क्स थे। तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों को मैं सिर्फ एक ही बात समझाती हूँ, बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ निकालेगी, बस जिंदगी से हार मत मानना, लाइफ को बचा के रखो, बहुत प्रेशियस है। इंसान का जो ये कहते हैं ना, इंसान की योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, आप जिंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ कर लोगे, बस हिम्मत बना के रखो।
हिम्मत की बात है और संघर्ष की बात है, तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं, कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए।
मैं हमेशा स्टूडेंट्स जब कहते हैं मैम बहुत निराश हो रहा हूँ, तो मैं कभी कभी उनको कहती हूँ कि बेटा मेरी लाइफ देखो कहना, तो तुम्हें महसूस होगा कि भाई जिंदगी झंड है लेकिन फिर भी घमंड है। ये मेरे पर एकदम फिट होता है क्योंकि मैंने बहुत नीचे से शुरुआत की। दिल्ली आई, ट्यूशन पढ़ाया, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया, कुछ लोग को लगता था जैसे कि ट्यूटर है इनकी क्या इज्जत है, स्पोकन पढ़ाया। उसके बाद जब इंस्टीट्यूट खोला तो उस समय उम्मीद नहीं थी कि इंस्टीट्यूट से भी कुछ अच्छी कमाई हो सकती है, तो शुरुआत किया तो ठीक ठाक चलने लगा। तो उसके बाद प्रेशर आया कि नहीं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए क्योंकि आपका अकाउंट्स बता रहा है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, तब तक शादी हो गई थी, तो लगा कि भाई आप किस पर भरोसा करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर पर। अब पता नहीं था कि ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम आने वाला है कि वही हमें मारपीट कर निकाल देंगे। तो यही हुआ, जो पहली कंपनी थी इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर गई, मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैंने या किसी ने नहीं सोचा था कि हम उस लेवल पे सक्सेसफुल होंगे। लेकिन मैं शुरुआत से वहीं रह गई, पढ़ाना, मैनेज करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ देखना। जब पैसा आया तो अगले का दिमाग खराब, छोटी नदी में बाढ़ जल्दी आता है। तो हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, जब पैसा देखते हैं तो थोड़ा सा बुरा आ जाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही बुरा गए। पूरा वर्ल्ड टूर करना, ये पहाड़ वो पहाड़, मतलब अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ कि अपने गांव के, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त के, उसके भाई, सबको लाके हर सेंटर पे फिट करना शुरू कर दिया। ये मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था ये आगरा के सेंटर में कि अभी सेंटर खुला ही है, एक ही बिल्डिंग है, तो हम एक जो बैच चेकर है उससे काम चला सकते हैं। 3-3 बैच चेकर क्यों अपॉइंट किया गया है? तो उन्होंने करीबन अपने 50-60 लोगों को अपॉइंट कर लिया पूरे सेंटर में. एंड 2014 आते आते उनका इरादा तो जो था वो था कि पूरा कब्जा करने का. तो कुछ एक दो लोग और थे मैनेजमेंट में जिनको मैंने ही रखा था, उनसे उन्होंने राय ली कि अगर नीतू सिंह अब नहीं रहे तो क्या होगा. तो उन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, नीतू मैम करती क्या है, थोड़ा बहुत टेस्ट पेपर देखती है, कुछ बुक्स वगैरह बनाती है, ऐसा कुछ है नहीं, मैनेज हो जाएगा. उसके बाद मेरे साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई, ऐसी चीज़ें हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक समय ऐसा था, देखिए कभी आप ऑफिस में परेशान होते हो तो घर वाले संभालते हैं आपको, घर में परेशान होते हो तो ऑफिस के दोस्त संभालते हैं. मैं दोनों तरफ से गई, पर्सनल लाइफ ख़त्म, प्रोफेशनल लाइफ में ये हालत कि मुझे मेरे मुनिरका सेंटर में बाउंसर ने, लेडी बाउंसर ने मुझे पीटा और फिर जाके पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन किया कि मुझे इन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है.
लेकिन उसका सीसीटीवी वीडियो अवेलेबल है,
सीसीटीवी वीडियो बता है कैसे बच गया था. वो क्या हुआ था कि मुनिरका में घपला भी हो रहा था अकाउंट्स का, तो मैंने जो कैमरामैन था, क्योंकि कैमरामैन वगैरह तो सब कुछ मैंने ही, जो सीसीटीवी वाले थे उनसे मैं ही बात करती थी, मैंने उसको कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन कर देना, क्योंकि इन लोग जब घपला करते हैं ना तो स्विच ऑफ कर देते हैं. उसने क्या किया था, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया था. इन लोगों ने मेरे पहुंचने से पहले सीसीटीवी जो था स्विच ऑफ किया था, इनको पता नहीं था डायरेक्ट कनेक्टेड, वरना उस केस में मैं पिट भी गई और मैं अंदर भी हो जाती अगर वो फुटेज नहीं रहता तो. क्योंकि मेरे पर STSC का मुकदमा दर्ज करने के लिए वो लड़की पहुंच गई थी.
उसमें शायद बेल भी नहीं है.
ऑफ कोर्स उसमें तो जांच बाद में होता है, अरेस्ट तो पहले होता है. तो यहां तक मेरे साथ हुआ. और मैंने सर सिर्फ एक ही चीज ठाना था कि अगर मैं आज टूट गई तो मैं जो इतना बच्चों को सलाह देती हूँ, एडवाइस देती हूँ, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, फिर कहेंगे कि बोलने का काम कुछ और दिखाने में कुछ और, बोलने और करने में कुछ और, ये हो जाएगा. फिर मैंने यही डिसाइड किया कि आई विल हैव टू सर्वाइव. और मैंने KD कैंपस खोला. KD कैंपस जब खोला तो KD कैंपस पर केस, मुझ पर केस. फिर मैंने कहा आपको कि मुझे ही पीटना, मेरे पर क्रिमिनल केस. करीबन 4 क्रिमिनल केस उन्होंने ठोका, 2 तो आज तक चल रहा है. तो क्रिमिनल केस, सिविल केसेस, करीबन सिविल केसेस में बताती हूँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 80 सिविल केसेस थे मेरे ऊपर. और उन लोगों का था कि इसको इतना परेशान कर दो कि ये KD कैंपस चला ही नहीं पाए. और हुआ क्या, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं हर रोज़ 2 बजे के बाद मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती थी प्लीज़ 2 बजे के बाद टाइम दो, क्योंकि मॉर्निंग में बैच चलता था. और 2 बजे के बाद रेगुलर बेसिस पे मैं कोर्ट में होती थी, क्योंकि उसके बाद 2 से लेकर 4, 4:30 बजे तक यही आर्ग्यूमेंट चल रहा है. और
कब की बात है
ये सर? 2015-16-17 तक यही सब केसेस चलता रहा. आप जिस फील्ड में हैं, ज्योतिष शास्त्र में, मैं तो मानती हूँ सर कि आप भी जानते होंगे कि आपका जो कर्म है वो वापस आके आप पर पड़ता है. इसीलिए आप किस्मत को भी मानते होंगे और कहते होंगे कर्म भी सुधारना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा ताकि ये आपका सही हो. क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अगर शनि है तो भाई आप गरीबों के साथ थोड़ा ढंग का व्यवहार करिए तो शनि खुश होंगे. आपके जो कर्म होते हैं आप पर पड़ते हैं. उन्होंने मुझे बर्बाद करने की जितनी कोशिश की वो बर्बाद होते गए. अभी हाल में उनकी कंपनी दिवालिया थ्रू कोर्ट घोषित हो गई है. मात्र 1,14,00,000 के लिए उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, जिसका टर्नओवर एक समय में 200 crore पार कर रहा था पर एनम. तो अफसोस होता है कभी कभी. मैं आपको सच बताती हूँ, आज कैमरा के सामने ही मुझे किसी ने फोन करके बहुत खुशी खुशी बोला कि मैडम आपको पता है. मैंने कहा क्या? अरे कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है, मात्र 1,14,00,000 रुपए के लिए वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है और आप उस पर ऑफकोर्स कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो होगा उसका कब्जा होगा. सर मैं रो पड़ी, मुझे रोना आ गया. मेरा बेटा कहा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा उसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा था और अपनी जवानी के 10 साल उस कंपनी को दिए थे, जिस कंपनी को इन लोगों ने बेच के, इन लोग बर्बाद करके खा के. कोई उन लोग को कुछ भी नहीं एहसास होता होगा क्योंकि उन लोगों ने बनाया नहीं, बनाया था मैंने. लेकिन थेड़ी कैंपस फिर मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने महसूस किया, स्टूडेंट्स को फील हुआ है, सब स्टूडेंट्स को, कि मेहनत इसने की है, स्टूडेंट्स ने मेरा साथ दिया। फिर मेरी जो किताब थी, वो जो बच्चे पढ़े हुए थे, धीरे धीरे वो हमारे पास आते गए। तो आज मैं कह सकती हूँ कि मुखर्जी नगर में कम से कम इतना सम्मान मैं ज़रूर पाती हूँ कि लाइफ में बहुत नीचे से ऊपर पहुँची हूँ, फिर बहुत गर्त में गई हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल सब बर्बाद, फिर अब ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। तो एक तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी और अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगी, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया।
मैम इतना सब कुछ हुआ आपका, और केडी कैंपस कब खोला था आपने?
केडी कैंपस 2015 में खोला, जब ये सब प्रॉब्लम्स हो गए, मैंने कहा कि भाई अब इतना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़के तो नहीं रह सकती मैं, मैंने केडी कैंपस खोल लिया।
ये केडी नाम क्यों रखा आपने?
क्योंकि जो नाम था पहले उस पर भी लड़ाई चल रही थी कि मैंने रखा, हालांकि रखा तो मैंने ही था, इंग्लिश नाम था तो रखा तो मैंने ही था। तो फिर मैंने सोचा ऐसा नाम रखूं जिस पर कोई लड़ाई ना हो, तो मैंने अपने फादर के नाम पर रख दिया। मेरे फादर का नाम कृष्णदेव सिंह था, तो मैं उनके नाम पे मैंने केडी कैंपस बना दिया।
ओके, तो ये वही तो रिलेट नहीं हो रहा था आपके नाम से और उसके नाम से। वेरी गुड। अभी सब कैसा है? अभी भी फाइट चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं?
देखिए, फाइट करने के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा, प्यार और तकरार बराबर वालों से करोगे तो टिकेगा। तो मैं तकरार, वो मुझसे कर रहे थे जब मैं उनके बराबर नहीं थी, तब भी वो तकरार कर रहे थे। अब वो मेरे कंपनी के बराबर अब नहीं आते, तो मैं तकरार करके उनको फुटेज नहीं देना चाहती। हालांकि वो फुटेज लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने 10 करीबन वीडियोस बना के उन्होंने मेरे खिलाफ, चाहे कैरेक्टर असैसिनेशन और बहुत बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बना के रख दिया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आऊँगी ऑनलाइन और जवाब दूंगी। मैं सीधा जाके कोर्ट से और मैंने कंप्लीट स्टे ले लिया, वो चैनल ही उड़वा दिया मैंने, क्योंकि वो सारा मेलिशियस था। लेकिन अब ना मैं उनका नाम लेती हूँ और ना ही मेरे जुबान पे उस कंपनी का नाम आता है, क्योंकि मुझे पता है फुटेज क्यों दूँ उनको। लड़ाई से बराबर वालों से होता तो सही रहता है।
जिसमें हम 100-200 करोड़ की बात थी, ठीक है, तो इतने में तो लोग किसी को साफ भी कर देते रास्ते से। आपके साथ भी हुआ ऐसा कुछ?
मैंने एक बार बहुत गुस्से में गालियां दी थी, बहुत गुस्सा था मुझे आया था, क्योंकि मेरा बनाया हुआ कंपनी छीना जा रहा था। तो कोई एक दो लोगों ने उस वीडियो को, ऑडियो को वायरल करके कि देखो नीतू सिंह कैसी गाली देती है। मुझे किसी एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा था कि मैडम आप भी तो बहुत गालियाँ दी हैं। मैंने कहा सर अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो आपके पास ये गाली का मामला नहीं आता, मर्डर केस आता, क्योंकि इतने बड़े मामले में ना लोग रास्ते से हटा देते हैं। मैं तो सिर्फ गाली देके अपना भड़ास मैंने निकाल लिया। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत छोटे से पैसे के लिए सर मर्डर होता है, यहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कह दूँ, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कहीं भी किसी लेवल पर किसी ने साथ नहीं दिया। क्योंकि मैं जब मानती हूँ ना कि आपको दीनहीन महिला बहुत लोगों को पसंद आती है और उनको लगता है चलो उनके लिए कुछ कर दो, लेकिन जब महिला सक्सेसफुल रहती है ना तो उनको साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मुझे कहीं से कोई हेल्प, कहीं पर किसी लेवल पे कोई हेल्प नहीं।
और कहीं मैंने ये भी देखा है कि महिला कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, शक की निगाहों से ही देखोगे आप उसे।
नहीं, मुझे देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सर, उनके पास सिर्फ एक तरीका होता है, कैरेक्टर असैसिनेट करो महिला का। और महिलाएं क्या गलती करती, मैं आपको बता दूं, ऑन कैमरा बताती हूं कि आप सफाई देते हो, जो आपसे प्यार करता है उनको आपकी सफाई की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है। और जो आप पर लांछन लगा रहा है, वो आपको चाहे जितनी भी सफाई अब उसको दे दोगे वो नहीं मानेगा, क्योंकि उनका अल्टीमेट मोटिव है आपके पीस ऑफ माइंड को चुराना और आपको बदनाम करना। अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो इल्जाम लगाते, मैं कहती हूँ तो ठीक है, तो मैं सफाई नहीं देती हूँ सर, सफाई क्यों दूँ। मैंने कहा ना, लड़ाई और प्यार बराबर से करो तो टिकता है, इसीलिए मैं आपको एक जवाब ही नहीं देती हूँ ना रिस्पॉन्ड करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ है नहीं है, मुझे ऊपर दिखाना है ना अपना चेहरा, मुझे यहाँ पर इस दुनिया में किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ।
काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ स्टोरी। अब थोड़ा मैं और आपके आपके पर्सनल थॉट्स जानना चाहूँगा, जनरल लाइफ को लेकर। जैसे आपकी जो लाइफ रही होगी बड़े छोटे से आप बहुत बड़े बने और बनते जा रहे हो, भगवान करे बने हो। आपने कभी कभी रूखी सोटी रोटी भी खाई होंगी, कभी चटाई पे भी सोए होंगे बचपन में अपने, और रातों भर जगे भी होंगे कभी पढ़ाई करने के लिए, कभी कुछ मेहनत करने के लिए। तो उसके बाद अब आपको जो भी मिलेगा वो उससे तो बेहतर ही है, लेकिन अब आपका बेटा भी है, उसको तो सब कुछ आराम से मिलेगा। और ये मैं सिर्फ आपके केस के लिए, मैं सारे लोगों को एक एग्जांपल में कि अब जो जनरेशन आ रही है जिनके माता पिता ने खूब मेहनत करी थी, चटाई पे सोए थे, अब उनको सब कुछ सुकून से मिलेगा, आराम से मिलेगा। जब वो 20-25 साल के होंगे, इसके बाद उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो बड़ी है। तो ये जो माइंडसेट अब बच्चों का बन रहा है, आप इसको कैसे टैकल करोगे अपने घर में?
मैं उसे समझाती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी आ जाए मैं टिक जाऊंगी, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर मेरे फील्ड में अगर अपना स्थान बनाना है तो तुम्हें जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टेज पर खड़े होते हो पढ़ाने के लिए तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए। आज का जो जनरेशन, उनको सब कुछ बहुत आराम से मिल रहा है। अब उसके रूम में मैं जाती हूँ तो मैं ठंडा जाती हूँ, क्योंकि वो इतना चिल्ड रूम में रहता है। अब मुझे वो भी याद है दिन जब दिल्ली में बिल्कुल गर्मी में मैं कूलर भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो रात में जब एकदम गर्मी से उबलने लगती थी तो मग में पानी ला के बिस्तर पर छिड़कती थी ताकि थोड़ा ठंडा हो, तो आधा घंटा नींद आए। तो वो दिन मैंने देखे हैं, वो नहीं देखा है। तो इसीलिए मैं मान के चलती हूँ कि वो उस लेवल का स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके लिए कम से कम इतना कुछ बना कर रख दूँ ताकि एटलीस्ट उसे स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चाहे मेरी माँ हो चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर सपूत है बना लेगा, कपूत है तो बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सपूत भी होगा ना तो उसे भी 10-15 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मैंने किया है। तो कम से कम जो माइनस से शुरू करके 100 तक पहुंचाना है, तो इतना मेहनत अगले जनरेशन को मैं क्यों कराऊं जब मुझे उसे +10 करके दे सकती हूं ताकि वो 100 तक पहुंचा सके। अब आप खुद देखिए, अंबानी अडानी भी जो है तैयार करके अपने विरासत अपने बच्चों को ही तो दे रहा है।
तो मतलब आप नेपोटिज्म को फेवर करते हो?
नहीं सर, नेपोटिज्म अलग चीज है। नेपोटिज्म को मैं बार बार बच्चों को यही समझाती हूँ कि बेटा तुम्हें पढ़ने तुम्हारे पेरेंट्स ने इसलिए भेजा, पड़ोसी के बच्चों को नहीं भेजा, तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि उनको अपना बुढ़ापा भी सुधारना है और जिस बच्चे को उन्होंने पैदा किया है उसका भविष्य भी बनाना है। तो अगर कोई अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा है तो वो नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन बाल बच्चों को भी मेहनत करके उस काबिल बनना पड़ेगा कि उसे संभाल सके। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो नेपोटिज्म नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि ये सारी बातें जो आई है हमारी कंगना दीदी लेके आई है और कुछ बॉलीवुड से आया है, तो ये सब चीजें वहां पर मायने रखता है, क्योंकि आप में अगर काबिलियत नहीं भी हो तब भी आपको मेन रोल मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। लेकिन मेन रोल आलिया भट्ट को भी मिला, मेन रोल आप देखिए तो सोनाक्षी सिन्हा को भी मिला, लेकिन इन लोग के आप अदाकारी में देखिए क्या फाइन इन्होंने अपने आप को बनाया है और आज ये कामयाब है। अब सेम मेन रोल आपने देखा होगा जो अभी आया है हीरा मंडी है ना, वो उसमें जो मेन रोल है आलम जेब है ना, उसको भी मिला, उन्होंने क्या सत्यानाश करके रख दिया। तो हाँ, बहुत मैं फ्रैंकली बता दे रही हूँ, लेकिन हाँ सही बात है कि आपको पहला मौका नेपोटिज्म दे देगा, लेकिन आगे की कामयाबी जो
टिक
है
आप मेरिट पे
कंप्लीटली ऑन मेरिट।
अच्छा, अपने हीरा मंडी जैसे देखते हो आप ऐसे कोई टीवी शोज?
मैं कुछ कुछ देख लेती हूँ सर, जब कुछ अच्छा लगता है तो देख लेती हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल 2-3 चीजें देखी, एक तो हीरा मंडी देखा, एक मैंने लापता लेडीज देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी
लापता लेडीज, अच्छा
बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे। तो एक दो चीजें कभी कभी देख लेती हूँ। एक मामला लीगल है देख लिया, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि मैंने खुद लॉ किया हुआ है इसलिए वो देखा, तो सही में लगा कि बिल्कुल सही रियलिटी दिखाया है कि अब चाहे जितने भी बड़े कॉलेज से करके आ जाइए लॉ, शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है नीचे से, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स बहुत घिसाई करता है।
लास्ट मूवी कौन सी देखी थी थिएटर में आपने?
थिएटर में तो सर मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सी मूवी देखी थी, गए हुए सालों बीत गए होंगे। सही बात है, मैं सही में भूल गई, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा।
तो आप क्या करते हो? चलिए काम।
अच्छा,
तो
हाँ, मैंने अपने बेटे के साथ देखा था कोई मूवी, वो था कोई ऐसी पिक्चर था, क्या नाम उसका मैं भूल रही हूँ, वही बच्चों की फिल्म थी।
जो रही होगी मार्वल की
कोई बच्चे की पिक्चर थी।
तो आप मूवी भी नहीं देख रहे हो कोई? हाँ
सर काम
इस
काम,
फेज काम। में लाइफ में जब बिजनेस सेट कर लिया आपने, वो ग्रो हो रहा है, तो क्या आती है मन में विचार, किस तरह के थॉट आते हैं?
सर मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि ये किताब अभी बाकी है, इसमें 2 पेजेस उसमें करेक्शन है, अभी वो वोकैबुलरी फाइनल करना है, ये बुक अभी छपने गया कब तक आएगा, उसका फेरो नहीं आया फिर से चेक करना है, मेरे दिमाग में सर यही चलता रहता है। फिर बीच बीच में अरे वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है मेरा बेटा को लेके, ठीक है फ़ोन में लगा रहता है, फिर जाके उसको भी डांटती हूँ। तो लाइफ में बस यही चलता है, काम और कभी कभी थोड़ा देख लेती हूँ अपने बेटे को।
कोई एम्बिशन बचे हैं, कोई गोल, कोई एम्बिशन?
सर अब मेरा ध्यान ज़्यादा ऑनलाइन पर है, क्योंकि आप सब चीज़ों का एक समय होता है, और अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करते हो तो समय आपको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए समय के साथ साथ सबको चेंज होना पड़ता है। एक समय था जब मैं ऑल ओवर इंडिया में यहाँ भी सेंटर खोलो, वहाँ भी सेंटर खोलो, इस सेंटर को चलाओ, वहाँ पे दूसरा सेंटर लगाओ। अब मैं समझ गई हूँ कि ये सब चीज़ें अब आपको समेट के ऑनलाइन पर फोकस करना है, तो अब मेरा ज़्यादा दिमाग ऑनलाइन पर रहता है, और सब कुछ मैं इस तरह से अब सेटल करने का शुरुआत कर चुकी हूँ कि कंपनी मेरे बिना भी चल सके, क्योंकि ऑफकोर्स आफ्टर 5 to 7 years तो मैं अब रिटायरमेंट लूँगी।
चलिए इस पे अच्छा क्वेश्चन आया है, पूछूंगा थोड़ी देर में। आपने लीगल पढ़ा, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ाने लग गए, इंग्लिश पे आपने काम किया। अगर मान लीजिए इंग्लिश नहीं होता, क्या सब्जेक्ट चूज करते आप?
सर मैं 2 चीज़ों में अच्छी थी, मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन आपको आपने महसूस किया होगा जो कहीं भी स्कूल या कॉलेज में भी इंग्लिश के टीचर मैडम होती है, लेकिन मैथ्स के टीचर सर ही होते हैं। तो बच्चे का भी माइंड सेट होता है कि नहीं मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर सर होते हैं। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये आता रहा कि अब ये माइंडसेट भी चेंज करो, अपने आप को भी एस्टैब्लिश करो, तो मैंने इंग्लिश ही चुन लिया। और मैंने मार्क किया सर कि मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कोचिंग करने के बाद, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैंने सही सब्जेक्ट चुन लिया।
एक बार बताइए मैम, जब आप ऐसे कॉलेज टाइम में थे तो आपको टीचरों को देख के ऐसा लगता था कि मैं भी टीचर बनूंगी एक दिन, या आपको ऐसा लगता था ये प्रोफेशन तो कभी नहीं?
सर मैंने जब 12th करके मैं गिरिडीह गई थी तो मैंने वहाँ पे कोचिंग ही खोला था। और कोचिंग खोलने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस किया था, क्योंकि मुझे उस समय महसूस हो गया था कि मुझे ये सूट करता है, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी कमाई वहाँ पे देखी जो गिरिडीह के हिसाब से काफ़ी अच्छी कमाई थी। तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि आगे चल के मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन बीच में जब मैंने लॉ किया तो इंटरेस्ट आया, अच्छी पढ़ाई होती थी, मैं कैंपस लॉ सेंटर से ग्रेजुएट हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जितने हैं मेरे से बिल्कुल ये सहमत होंगे कि ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल देती है अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो। सीनियर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, भाई आपको काम सिखा रहे हैं, पैसे भी चाहिए तुम्हें, आने जाने के खर्चे दे देंगे, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं देंगे, केस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपके पास से कोई केस लेके आएगा भी नहीं, और आप यंग है देखने में तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरे साथ के जो लोगों ने, लड़कों ने जो लॉ किया था वो आज अब देखेंगे आप तो मुझसे बहुत बड़े लगेंगे वो, क्योंकि उन्होंने अपने बाल सफ़ेद छोड़े हैं, चेहरे पर जो झुरियाँ हैं वो कुछ तो लगता है जैसे कि जानबूझ के झुरियाँ लाने की कोशिश किए हैं, तो वो लोग बूढ़े दिखने की कोशिश करते हैं तभी जाके उनके पास केस आता है। तो लॉयर्स के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और मैं मानती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से सही में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीनियर्स को कि यंग लॉयर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उनको अच्छी सैलरी दीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में उनका, मैं मुझे लगता है अराउंड 70-80% जो लॉयर्स होते हैं वो धीरे धीरे कोई और लाइन पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास गुजारे के लिए पैसा नहीं होता है। बेस्ट एग्जाम्पल सामने बैठी हूँ,
फिर वो केडी कैंपस खोल देते हैं फिर आपको भी लॉयर्स की जरूरत पड़ने लग जाती है फिर।
नहीं, आप लॉयर्स भी जब लेते हैं तो आप भी एक्सपीरियंस लॉयर चाहते हैं, आप भी चाहते हैं जिनका फेस वैल्यू हो, जिनका नाम हो, तो अल्टीमेटली वैसे तो बहुत किने चुने लॉयर्स हैं, तो बाकी जो होते हैं उनके असिस्टेंट बन के रहते हैं। मेरा कहना है जो असिस्टेंट भी है उनको अच्छा पे करो यार, आप अच्छा कमा रहे हो तो कम से कम अपने जूनियर्स को एक्सप्लॉइट मत करो, उनको इतना पेमेंट तो ज़रूर दीजिए कि उनको लगे यार अच्छा शानदार प्रोफेशन है, मैं भी 50,000 रुपया कमा रहा हूँ, कल हो के मैं भी इनके तरह बनूंगा, वो कम से कम उस प्रोफेशन में टिकेंगे तब ना बनेंगे। मेरे जैसे भाग गए तो फिर क्या बनेंगे वो भी।
बीइंग अ टीचर, सबसे अनोइंग चीज क्या लगती है आपको?
अनोइंग चीज तब लगती है जब आप डेढ़ घंटा क्लास ले लीजिए और कोई बच्चा एकदम ब्लैंक बैठ कर देख रहा है और फिर कह देगा मैडम कुछ समझ में नहीं आया, मन करता है उसको थप्पड़ मारो। अरे नहीं समझ में जो आया उसी समय पूछ लो, मैं चार बार रिपीट कर दूं, तुम डेढ़ घंटे बाद कहोगे कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद कितना अनोइंग लगेगा। और हर क्लास में एकाध बच्चा ऐसा ज़रूर होगा, ऐसे ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है वो ए बी सी डी के बाद कुछ पढ़े ही नहीं है। एक लड़का आके मुझे बताया कि मैम आप ऐसे नहीं पढ़ाओगे, मैंने कहा कैसे, वो मुझे एक टेबल दिखाया टी ए टा, ठीक है टी बी टब टी सी टस, तो वो हिंदी में प्रोनंसिएशन लिखा हुआ सारे लेटर्स के साथ टी ओ टो और टी ओ टू दोनों हैं। तो मैम आप जब तक नहीं बोलिएगा कि ऐसे बोलना है कि डी ए डे होता है या डा भी होता है तो हम कैसे जानेंगे टूडे। मैंने कहा एक काम करो रिफंड ले जाके क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं इंग्लिश में वो भी एग्ज़ाम के लिए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है तो आप केडी कैंपस आइए, केडी लाइव में एडमिशन लीजिए। स्पोकन पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से बैच है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, लिखना पढ़ना सीखना है कि लिखा कैसा जाएगा, ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए अलग से कंपल्सरी इंग्लिश का बैच है। लेकिन एकदम जो बहुत खराब है इंग्लिश में उनको मैं कहती हूँ स्पोकन में आओ। आप आए हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने और कहो कि वो पढ़ाने, तो ऐसे 9 महीने का सिलेबस है फिर कहाँ से होगा। और ये सबसे अनोइंग लगता है मुझे, प्लस जो बच्चे खाली बात करते रहते हैं गप करते रहते हैं वो इरिटेट करते हैं क्लास में, तो उनको भी समझाती हूँ कि बेटा तुम्हारी फीस आ गई, अब तुम भी कहीं घूमने फिरना है तो घूम लो, मुखर्जी नगर बहुत अच्छा जगह है, क्यों क्लास में बैठ कर डिस्टर्ब करते हो। तो ये अनॉय करता है टीचर, किसी भी टीचर को।
कुछ रील देखी है मैम आपकी, इसमें आप कुछ चिट खोल के ऐसे पढ़ते रहते हो, वो क्या है?
वो असल में क्लास में संख्या बच्चों की ज़्यादा होती है तो मैंने उन लोग को अलाउ किया हुआ है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्लिप में भेज दो। तो जब स्लिप में क्वेश्चंस आते हैं तो आप मान के चलिए अगर 25 स्लिप आए तो 20 होते हैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के या कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड जो समझाती हूँ। जो 5 होते हैं किसी में शेर व शायरी रहेगा, किसी में कुछ ऐसी बात होगी। तो ये होता क्या है ना कि जो पढ़ाई से रिलेटेड चिट होते हैं वो तो कभी रील बनता नहीं है, ये जो बकवास वाली चीज़ें होती हैं उसका रील बन जाता है। तो आप जो देखते हैं वो मैं कह सकती हूँ 25 में 5 होते हैं।
और एक तो मैंने आपने देखा है कि आप कंट्रोवर्सी बहुत अट्रैक्ट करते हो, ठीक है?
मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, वो हो जाता है।
आपने संदीप महेश्वरी पे एक बार बोला था, बहुत ट्रॉल किया गया लोगों ने आपने, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था उस दिन। सो आप कैसे देखते हो इन ट्रोलर्स को जो आपको कमेंट में कुछ भी बोल रहे हैं बिना विदाउट, फिर एक कोई आता आपके फेवर में, अरे तुम जानते नहीं हो नीतू मैम कौन है, इनके पास पता है कौन सी गाड़ी है। सो इस तरह से आपके फेवर में भी कुछ लोग आते हैं।
सर इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो अभी चल रही है, वो है अंधभक्ति की। आप किसी की भी अगर भक्ति कर रहे हो तो आप उनका जो जो वो सही कर रहे हैं और जो उनके ड्रॉबैक्स है दोनों की तरफ आप बात करिए, प्रोस एंड कॉन्स दोनों बात करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिसकी अंधभक्ति करते हैं उसकी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में उसके लिए खड़े हो जाते हैं सेना बनकर, जिनको आजकल आप ट्रोल सेना बोल सकते हो। ये जो ट्रोलिंग करते हैं ये नहीं देख रहे हैं कि संदीप महेश्वरी 10 बात में 8 बात सही बोल रहे हैं, 2 वो गलत कर रहे हैं। वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं। भाई आप बताइए, चलिए मैं ज़्यादा किसी और फील्ड में नहीं जाऊँगी, मैं अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में ही बात करूँगी। उनका कहना था, जो बच्चे कहते हैं कि नहीं शायद आप इसलिए उनके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि आप फ्री पढ़ाओ यूट्यूब में और जिनको ज़रूरत होगा वो आपसे ले लेंगे कोर्स। ये तो हम लोग पिछले 5-7 साल से कर रहे हैं, हम भी अपने चैनल पे इंग्लिश माई नीतू मैम में फ्री इंग्लिश पढ़ाते हैं, केडी लाइव में सारे टीचर्स का फ्री चल रहा है और जिनको एडमिशन लेना रहता है वो ले लेते हैं। तो ये अब कौन सी नई बात बोल दी है? फिर मेरा ये कहना है, चलो हम तो फ्री पढ़ा रहे हैं, जिनको पेड करना है वो पेड ले ले रहे हैं। आपने जो इमेज बाजार बना कर रखा है उसके कितने इमेजेस फ्री में दिए जरा बता दो, नहीं है। उनका जब जो उनका चलता रहता है क्लासेस उनमें जब उनका भीड़ आना कम हो जाता है, वॉचिंग कम हो जाती है, व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी उठा लेते हैं। उन्होंने एक विवेक बिंद्रा पे उठाया। मेरा कहना है विवेक बिंद्रा के साथ जो उन्होंने किया है, विवेक बिंद्रा ने केस कर दिया, अब कोर्ट ने उन पर तो पाबंदी लगा दी, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब बताइए, वो जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि आपके आपके साथ कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए। अभी विवेक बिंद्रा ने उनके साथ उन पर केस किया हुआ है। उन्होंने आचार्य प्रशांत पर जब कहा, आचार्य प्रशांत के बहुत बड़ा फॉलो, बहुत बड़ा जो कह सकते हैं मास फॉलोअर्स है, सब लोग आगे उनके कमेंट सेक्शन पे। अब ये बताइए, उन्होंने अपना वीडियो डिलीट क्यों किया? अगर आप सही है तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट किया,
मुझे जानकारी नहीं थी।
हाँ, वीडियो उन्होंने प्रशांत, आचार्य प्रशांत को को जो टारगेट करके उन्होंने बनाया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो आप महान हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, सब सही है, लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब टारगेट करने लगते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करने लगते हैं, इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं भीड़ में शामिल हो गए हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी करो और भीड़ लाओ, वो उसी में हो गए।
तो आप बिल्कुल सच बोलते थे, ठीक है, और
मैं मुंह पर बोलते
थे, सच फर्क पड़ता है इसे?
कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, ट्रोलिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे क्या है, देखिए एक है बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पब्लिसिटी, करो मुझे ट्रोल। मैं तो इनफैक्ट किसी पर कुछ बोल दूँ तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता है, लेकिन मैं बहुत खुल के सही बोल देती हूँ। मेरा ये कहना है कि हो सकता है ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन सर एक जो हो गया है ना फीलिंग शुरू से कि मेरे साथ जब गलत हुआ, सर मैंने 200 करोड़ की कंपनी छोड़ी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो ट्रोल आर्मी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैंने तो करोड़ों नुकसान पहुंचा के मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं।
और मेरे ख्याल से एक ऐसा, ये सोशल मीडिया का एक चेहरा है, आपको फेस करना ही पड़ेगा, आपको प्यार भी मिलेगा और आपको हेट भी मिलेगी।
देखिए आपको है ना अपनी बात समझानी पड़ेगी अच्छे से, और कुछ लोग जब कहीं पर बहुत दिनों तक रहते हैं उन्हीं के साथ तो उनको बहुत ही ऊपर मान के चलते हैं, बहुत भगवान मान लेते हैं। मेरा कहना है आप मुझे या किसी को भगवान मत मानो, हम सब इंसान हैं और हम सब से गलती होती है। हाँ ये ज़रूर है कि आप मुझे बहुत हाई रिगार्ड दे रहे हो और मेरे से कोई गलती हो तो बता दो कि मैडम आपने ये गलत किया। वैसे ही सेम आप कोई भी हो, संदीप महेश्वरी हो, कोई भी हो, आप उनको बता दो कि सर ये आपने गलत कर दिया। और वही हुआ आचार्य प्रशांत के केस में, उनको अपना वीडियो इसलिए डिलीट किया क्योंकि वहाँ पे बाढ़ लग गए थे कमेंट्स के।
मजा आता है कोई सब करने
मैं करके चल निकल लेती हूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं कि उसमें होता क्या क्या नहीं होता है। हाँ कभी कभी पता चलता है कि बाप बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ गए, मैडम बहुत नेगेटिव, मैंने कहा ठीक है यार तुम लोग निपटो मुझे क्या है, तो बोल के निकल गए।
अगर ऐसे आज मैं पूछूं आपसे कि आपको किन कामों में खुशी मिलती है तो तीन चीजें क्या होंगी?
पढ़ाना, किताब लिखना और अपने कुछ नियर एंड डियर वन से बहुत छोटा सा सर्कल है मेरा, उनके साथ समय बिताना। ट्रस्ट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, पता है,
क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाते हो।
नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिलता।
अच्छा समय नहीं मिलता।
हाँ जो बचपन के दोस्त थे उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि वैसे दोस्त तो फिर बने नहीं, और अब वो सारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में सिमट के रह गए। हम लोग का अभी भी है स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप है, अदरवाइज उसके बाद दोस्त बने नहीं क्योंकि समय नहीं।
मैम आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, आप एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आए हो क्योंकि आप 22 को बॉर्न हुए हो, ठीक है, तो 22 जो डेट होती है 2+2=4 होता है, 4 ज्योतिष में राहु रूल करता है इसको। सो कहीं ना कहीं जो लोग भी 4 तारीख के होते हैं, जैसे कोई 4 को जन्म लिया, 13, 22 या 31 को, तो इनका जो मेन प्लेनेट वो राहु हो जाता है। अब जैसा राहु होता है ऐसे खुद बन जाते हैं। अब राहु की आप इमेज देखते होगे तो उसके पास सिर्फ हेड होता है, उसके पास बॉडी नहीं होती है। तो ये लोग हमेशा जो दिमाग से काम होते हैं वो करते हैं, उसी में अच्छे भी होते हैं। कोई भी 4, 13, 22, 31 वाला अगर हाथ पैर या लेबर का काम करेगा नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ होती है कि राहु के पास हेड है तो जुबान का काम, दिमाग का काम, ये चलता है उसका। राहु सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेनेट है कि मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी उम्र क्या है, तुम बड़े हो छोटे हो, गलत कर रहे हो तो मैं बोल दूंगा। इस वजह से ये इन लोगों के दोस्त नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि ये सच बोल देते हैं। और ये दुनिया ऐसी हो गई इसको सच नहीं सुनना, ये सच एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। इनको आप चाटुकारिता करो, इनकी तारीफें करो, सब सही है, लेकिन आप इनको फीडबैक दे दो एक क्रिटिकल, ये नहीं सह पाते। इसीलिए 4 तारीख वाले बेचारे कहीं ना कहीं अकेले रह जाते हैं।
नहीं, तो मैंने मार्क किया है मेरा पर्सनल लाइफ में भी, मैं हमेशा स्ट्रेट और सही ओपिनियन देती थी कि आप भी मुझे सही ओपिनियन दीजिए ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ। आपको मैं बता दूँ कि आपके पढ़ाने के तरीके को लेकर मार्केट में ये चल रहा है, तो मेरे अपने हस्बैंड ही बर्दाश्त नहीं कर पाए, जबकि मैं सही फीडबैक उनको इसलिए देती थी ताकि वो अपने में इम्प्रूव करें, तो वो नहीं कर पाए। और आप जो अभी 4 तारीख की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में मुझे विश्वास है, आपको मैं बताती हूँ रीज़न। क्योंकि मैं जब पढ़ाने जाती थी ट्यूशन, तो एक थे जो स्पोकन पढ़ रहे थे और उनकी एज उसमें अराउंड 50 थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, तो मैंने उनको अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दिया। उन्होंने जोड़ा, जोड़ कर उन्होंने कहा नंबर वन, पूरा जोड़ने के बाद एक आ रहा था, डेट ऑफ बर्थ, ईयर और मंथ सब मिला के। तो उन्होंने, आप ये शौकिया तौर पे कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, शौकिया तौर पे कौन ट्यूशन पढ़ाता, होम ट्यूशन। आपको सही में पैसे की ज़रूरत है? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो वो बार बार कन्फ्यूज्ड हो रहे थे कि नंबर वन है, आप जो ये काम कर रहे हो ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपका तो कुछ और होना चाहिए था आपके लाइफ में। अब वो बोल नहीं पा रहे थे कि आपके लाइफ में बवाल पैसा होना चाहिए था, आप ये ट्यूशन पढ़ा रहे हो, मुझे आके पूरा महीना पढ़ाओगे आप 10,000 में, रोज 1 घंटा दोगे, तो ये उनके गले नहीं उतर रहा था। दूसरी, एस्ट्रोलॉजी में मुझे थोड़ा इसलिए विश्वास हो गया क्योंकि जब मैं 21-22 साल की थी तो गिरिडीह में एक पंडित ने मुझे बताया था मैरिड लाइफ को लेकर और मेरे करियर को लेकर। तो उस समय तो खैर यंग थी, मुझे तो हवा में ही रहते थे हम लोग, यंग 21-22 साल में क्या रहेंगे। 15 साल के बाद मैं ढूंढते हुए उनको वापस गई थी गिरिडीह कि उनसे पूछूँ कि और मेरे लाइफ में क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत सही प्रेडिक्ट किया था। तो तब तक वो, उनका देहांत हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में मैं कह सकती हूँ विश्वास है। और आपके पॉडकास्ट से जब मुझे इनविटेशन मिला तो मैंने कहा यार यहाँ तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पॉडकास्ट के बाद तो इनको पूरा पका दूंगी मैं कि कुछ बताओ मेरे बारे
बिल्कुल,
में।
बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने आपको बात कही ना वन की, तो जैसे दो तरह के नंबर होते हैं, एक को मूलांक कहते हैं, भाग्यांक होता है। तो आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर वो आपका 1 है। तो 4 आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है और 1 आपके लाइफ के पाथ को डिफाइन करता है कि आप किस रास्ते से। 1 है तो ये सूर्य का अंक है, सूर्य को कहते हैं ग्रहों का राजा है। अब राजा है तो ये नौकरी नहीं कर पाएगा, किसी के नीचे दब नहीं पाएगा, इसे खुद का ही काम करना पड़ेगा, राजा को ऑर्डर देने की आदत है। ठीक है, तो यही देख के आई गेस उन्होंने बोला होगा कि क्यों ऐसा काम कर रहे हो, डू समथिंग लाइक किंग, कि आप खुद के ओनर बनो, खुद के राजा बनो। और नंबर 1 भी क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इसके अंदर, बोलने की कला अच्छी होती है, नेतृत्व का गुण होता है। तो ये 4 और 1 न्यूट्रल रिलेशनशिप है, पर अच्छे फ्रेंड्स होते हैं राहु और सूर्य। और तो मुझे आप तो राहु जैसे फुल दिखते हो। ठीक है, एक चीज़ राहु की और है, राहु ने एक बार बड़ी मशक्कत करी थी अमृत पीने की, आपको याद, सुनिए हमने समुद्र मंथन की कथा
सुना था।
तो उसको अमृत पीना था, तो उसने भेष बदल के वो देवताओं की लाइन में बैठ गया कि यार मुझे अमृत पीना पड़ेगा। उस समय तो राहु नहीं बना था, उस समय उस राक्षस का नाम स्वार भानु था। सो एक ही बॉडी थी, वो अमृत पीने की लाइन में बैठा, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में थे, वो अमृत पिलाने आए, उसने थोड़ा सा ऐसा पिया, इतने देर में सूर्य और चंद्रमा खड़े हो गए, अरे ये तो इम्पोस्टर है, ये तो नकली आदमी है। तो भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया, तो वो पिया ही था उसने कि उसका गला कट गया, तो हेड हो गया राहु और धड़ को केतु, तब से राहु केतु अलग अलग हो गए। तो यहाँ से एक बात और आती है कि अगर आप 4 तारीख वाले हो, जिस चीज़ का बहुत डिज़ायर करोगे, मतलब शिद्दत से चाहोगे कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो मिलते मिलते नहीं मिलती। आप बताओ, आपने रिलेट किया आपने?
कर सकती हूँ
कि मतलब वो पहुँच, मतलब अटैची में पैसा है ऑडी खरीदने का, शोरूम पे जाओगे आपके पसंद की रंग नहीं मिलेगा, ऑडी मिल जाएगी। सो इस तरह का ये राहु ऐसे फंक्शन करता है। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कमेंट में बताएंगे 4 नंबर वाले, अब डेस्टिनी नंबर भी हो या आपका मूलांक हो, तो भी ये चीज़ होती है लाइफ में। मैंने बड़ी नोटिस करी 4 वालों के लाइफ में, पर ये बहुत बढ़िया ब्रेन पावर देता है, बुद्धि देता है ये। और कई सारे लोग जो स्पेशली जो 4 नंबर की फीमेल्स होती हैं, इनको लाइफ में लोग सिर्फ गलत मोटिव से मिलते हैं, मेल्स जो, इवन इनके कई बार इनके खुद के रिश्तेदार इनको नहीं समझ पाते, ओरिजिनल थिंकिंग है। अब ये जैसे मैं अक्सर अपनी क्लासेस में एग्जांपल देता हूँ जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, कि अगर आप 4 नंबर के फीमेल हो, आप तो ऐसे बात करोगे कि सामने लड़का है यार, बात ही तो कर रहे हैं, लड़का सोचेगा कि नहीं 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 इसके मन में ज़रूर मेरे लिए कुछ है। तो हमेशा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, राहु के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है।
नहीं, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हुए हैं, तभी तो मैंने कहा मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं जब किसी के साथ अच्छा रिलेशन रहता है तो मैं बहुत खुल के बात करती हूँ और बहुत अपना समझ के। अब अगला अगर कोई गलत इंटेंशन दिखा देता है तो फिर मैं अपना जो रियल मेरा फीलिंग है ना वो छुपता नहीं है, मेरा भड़ास और मेरा गुस्सा सब भयंकर फूटता है।
फिर वो सह नहीं पाते।
कई बार मुझे एक दो ज्योतिषी ने कहा है कि थोड़ी डिप्लोमेटिक बनोगे ना तो आप बहुत तरक्की करोगे, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो अंदर है वो मेरे चेहरे पर दिख जाता है, मैं वो स्वीट पॉइजन बन नहीं पाती। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको मिलते मिलते रह जाता है, तो इसी पे मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ पे भरोसा किया है कि एक शेर आपने सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता।
क्या बात।
तो जो भगवान ने दिया है सर आँखों पर, और जो नहीं दिया तो मुझे लगता है कुछ पाने के लिए आपको कुछ कीमत अदा करना पड़ता है। तो शायद मैंने कुछ कीमत अदा की है, और आप जितने भी फेमस पर्सनालिटीज देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं उसका चुकाना पड़ता है कीमत। तो वही मान के चलिए नियति का खेल।
थैंक यू सो मच नीतू जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। इसी नोट के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच।
राधे राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।